फिर दूसरी वजह इबादत करने की, अपनी कमज़ोरी को महसूस कीजिए। मैं किसी पर इन्हेसार करती हूँ, अल्लाह जी मैं मिस्कीन हूँ, ऐ अल्लाह जी मुझे आपकी बड़ी ही ज़रूरत है। यकीन करें आपको अल्लाह ताला सदमों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से बचाए। कल रात भी कई मैसेज होते हैं, डेली होते हैं, तो किसी का मैसेज सुना और इतना दिल बोझल होता है फिर अपनी बहनों के मसले सुन के, कि जिसको कहते हैं ना कि अपनी खुशी खुशी ना लगे। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे बताएं मैं इन बहनों को क्या जवाब दिया करूं, मेरे पास भी उनका जवाब नहीं होता और जो मैंने जवाब देना है मुझे इसका जवाब भी पता है कि वो बेचारी इसके बाद क्या कहेंगी, किधर जाएं, माँ बाप ने जो ला के इधर डाल दिया और जालिम लोग ले आए, आप वो जो मर्जी करें जिधर मर्जी ले जाएं, क्या करेंगी वो बेचारियाँ। आप तो मुंह भर के कहेंगे फैसला ले ले, ऐसे गंदे बंदे के साथ नहीं रहते, पर वो किधर जाएं, वो उस जंगल में से जिधर से निकल के आई हैं कौन उनको अपना देगा। वो माँ बाप, फैमिली, ख़ानदान तो बातों से और तानों से मार खाएंगे। सोचिए ज़रा ऐसी कैफियत जब बंदे को लगे कि वला मकुम भी दुआ का रबी शकिया। चलो मूसा तो मर्द थे ना, कमा लेंगे, कुछ कर ही लेंगे, ऐसी कमज़ोर बच्चियाँ किधर जाएं, ऐसी औरतें कहाँ जाएं, जिनका जालिमों से वास्ता पड़ गया, जिनका फाहिशों से वास्ता पड़ गया, करप्ट लोगों से वास्ता पड़ गया। उस वक्त फिर आप नमाज में रोएं, ये है उसका इलाज। कभी जिंदगी में कोई आपको डिग्रेड करे, आपकी कदर ही ना करे, खड़े होकर अपने रब को अपनी कमज़ोरियों का एहसास करें, अल्लाह जी मैं बड़ी कमज़ोर, अल्लाह तेरी आजीज़ बंदी, तेरी मस्कीन बंदे। और कभी कभी तो ऐसे फिर आंसू निकलेंगे, अब नमाज भी ज़रूरी नहीं है उस वक्त, दवा असर नहीं कर रही, खाने को दिल नहीं कर रहा, वो कहते ना कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, आप रो ही पड़े, अल्लाह आपके आजीज़ बंदे, अल्लाह आपके कमज़ोर बंदे, अल्लाह मैं तेरी बड़ी आजीज़ बंदी हूँ, अल्लाह लोग पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, तुझे पता है कि मैं कितनी डिपेंडेंट हूँ। यकीन करें आप बग़ैर वजू के भी अपने रब के सामने अपनी कमज़ोरियों को साबित करते हैं आपकी इबादतों की। और तीसरी वजह, बरकतों से आ गई, इबादत की बरकतों को समेटिए। आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ दिया, आप उसमें से बरकत और खैर तब ही लेंगी जब अल्लाह देना चाहेगा। जब एक बंदा दुनिया में आता है, आप देखिए ना कि सबसे पहले अल्लाह ताला को मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने देखा, पहली वजह ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अनकॉन्शियसली आप खुद को हम्बल फील करेंगे और उसके आगे अपने आप को आजीज करते जाएंगे, पहला काम तो यही हो गया ना। आप अपनी हर खूबी का रिगार्ड अल्लाह ताला को देंगे, आपकी नज़रों में अल्लाह बड़ा होता जाएगा, साथ ही आपके अंदर फीलिंग आ गई डिपेंडेंसी की। और इंसान की ये फितरत है कि वो जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, तो अपने आप को हम्बल फील करता है। बच्चे भी तो माँ बाप के आगे तभी तक ही झुके रहते हैं ना जब तक माँ बाप देते हैं, इधर पहली कमाई आई उधर आंखें ऊपर चली गई सर पे, खुद कमाते हैं, खा लेंगे, ना करें ना करते, कोई एहसान किए हमारे सर पे। वो जिसको पंजाबी उर्दू में भी हम कहते हैं ना कि बंदा जिससे लेके खाता है ना उसके आगे झुकता है, इसलिए हमारे बड़े बहुत केयरिंग थे इस बात में कि किसी ने अगर हमें एक रोटी भी खिला दी तो अब इसके बाद हमसे कोई बात ना मनवा ले। तो जब आपके अंदर डिपेंडेंसी की फीलिंग आई कि मैं अल्लाह ताला आपके आगे झुकी हुई हूँ और आप अल्टीमेटली परफेक्ट हैं और आप बस मेरी मदद करते हैं, और यकीन करें कहते हैं कि अगर दुनिया में गुर्बत ना होती, बीमारी ना होती, भूख ना होती, मौत ना होती, तो कभी लोग अल्लाह के सामने अपने आप को हम्बल ही ना करते, ज़रूरत ही नहीं थी अल्लाह की। रिवायत पढ़ी थी अलविदाया नहाया में कि फिरौन को 200-300 साल की ज़िंदगी में कभी दर्द सर भी ना हुआ, अगर कभी हो जाता ना तो वो जान लेता कि उससे भी बड़ा रब कोई है, तभी तो कहता था ना रब्बुकुम अला, मैं रब्बे आला हूँ। चलिए ये दो हो गए, अब जो तीसरी बात यह है कि ब्लेसिंग्स, अवेयरनेस ऑफ ब्लेसिंग। आप देखिए कि इंसान की ये ख्वाहिश है, नंबर एक मुझे नेमते मिले और दूसरी बात है कि मैं इन नेमतों को एंजॉय करूं। जितनी ज्यादा नेमते इंसान को अल्लाह ताला से मिलती जाती है ना, उतना उसके अंदर मोटिवेशन अल्लाह की इबादत का बढ़ता जाता है। जिंदगी में बरकतों का आ जाना फिर तलब पैदा करता है कि आप किसी को थैंक यू बोलो। जैसे आप देखें ना, आपको एक गिफ्ट आया, आप कहेंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने फिर दोबारा कुछ दिया। जब दो तीन चार दफा कोई आप पे नेकी करता है ना, तो फिर आपका दिल करता है मुझे भी कुछ करना है। ये जो मुझे भी कुछ करना है ना, यही इबादत है। कुछ वो करे, कुछ मैं भी कर दूं, अल्लाह को आप क्या देंगे? फल या बुदू रब हाजल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो बात वाजे हो रही होगी, अल्लाह ताला की नेमतों की और उसकी बरकतों की मौजूदगी का एहसास बंदे के अंदर एक जज्बा शुक्र डालते हैं। और वो शुक्र क्या है कि मैं भी तो जवाब में कुछ दूं अल्लाह को, कुछ कहूँ अपने मालिक को कि मेरे मालिक तू मेरी मदद फरमा, तू मुझे दे। आप देखिए ना कि जैसे एक बच्चा था तो नमाज नहीं पढ़ता था, या पढ़ता होगा तो माँ ने आके मेरे सामने ये एहसास दे दिया कि जी नमाज नहीं पढ़ता। तो खैर, मैंने उस बच्चे को शर्मिंदा तो नहीं करना था ना। हुआ क्या कि मैंने अपने उस दर्स के अंदर सूरह फातिहा का तर्जुमा शामिल कर लिया और उसके बाद थोड़ी बहुत इस पर बात कर दी कि बेटा जब आपको कोई कुछ देता है तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू। तो नमाज इज़ अ थैंक यू लेटर टू अल्लाह सुब्हान तआला। आपको अल्लाह ने ये दिया, वो दिया, ये दिया, तो उसके जवाब में आप आके नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह को थैंक यू बोलते हैं। और लिख लीजिए ये बात दिल की तख्तियों पे, आप जितने शुक्रगुजार होंगे अपनी नेमतों पे, आप उतने आबिद होंगे, उतनी अबूदियत होगी। शौहर को तो देखे ज़रा, क्या अल्लाह ने आपके लिए एक बंदा मुसख़्खर कर दिया? कैसे दिन रात मर्द काम करते हैं ना घर वालों के लिए। अपनी कमाइयों का 95% बीवी बच्चों पे लगाते हैं। अब आपने देखा अपने शौहर को, खूब मेहनत करने वाले, कहाँ से कमा कर लाए और हलाल हराम का फर्क रखने वाले। अब ये एक नेमत आपके दिल में आई, आपको साथ ही अपनी मसीह याद आ जाएगी जो रोज आके रोती है कि हाय चर्स पी के सो जाता है और फिर उठ के मुझे मारता भी और खाना भी मांगता है। अब आप अपने इस जज्बे को कि एक शौहर की कस्टडी में अल्लाह ने आपको दिया, किधर जाकर इस जज्बे को निकालेंगी? फल या बुदू रब हासिल। अल्लाह आपका बड़े ही शुक्रिया। अल्लाह जी थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह जी आपने मुझे कोई भंगी, कोई चरसी, कोई ड्रग एडिक्टेड, कोई बेनमाजी शौहर नहीं दिया। बस फिर देखिए वो दास्ताने मोहब्बत खुल जाएगी। इसी तरह किसी वक्त आपकी नज़र पड़ेगी अपने बेटे पे, एक ही बच्चा या एक बेटी दी, कोई भी बेटा बेटी एक ही बराबर है। अब आपकी एक दिन नज़र चली गई, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह इसकी कल शादी करूंगी, अल्लाह घर में रौनक होगी, अल्लाह इसको नेक बना दे, अल्लाह इस एक कोई 100 में बदल दे, अल्लाह इसकी खैर डाल दे। देखिएगा उस दिन आपकी नमाज इस औलाद की ब्लेसिंग का वो अमली नमूना होगी कि शायद छः छः बेटे होने वालों ने कभी ऐसी नमाज ना पढ़ी हो। तो अपनी पांच नमाजों को पांच नेमतों से बांध लें, लिखे जुमला, कम से कम डेली पांच नेमतें चूज करें अपनी, ठीक है? इसमें जान की भी, माल की, कुरान की मोहब्बत। आपको इस वक्त कुरान की दौलत मिल रही है, आप इसको नेमत बना लें। देखिए ना, ब्लेसिंग्स कभी रूहानी होती हैं, कभी जिस्मानी होती हैं, कभी माल भी ब्लेसिंग होता है, कभी रिश्ता ब्लेसिंग होता है, कभी इल्म। इल्म से प्यारी क्या दौलत है, कईयों को नहीं मिली, आपको भी ना मिलती अगर आप सो रही होती, ठीक है? अब आप आज की नमाज से पहले आज का गोल बना लीजिएगा कि अल्लाह ताला आपने मुझे अच्छी बात सुनने का मौका दिया, मुझे शौक डाल दिया। अल्लाह कभी तो मैं गाने सुनती थी, अल्लाह कभी तो मेरे पाँव थिरकते थे किसी सास को सुनकर, अब क्या हो गया? बस आप ना आज की नमाज अल्लाह के साथ इस नेमत, इस बरकत को खोल दें। यकीन कीजिए, ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत को बढ़ा दूंगा। आपकी नेमत बढ़ती जाएगी, खूब बढ़ती जाएगी, खूब बढ़ती जाएगी। तो फिर तीसरी वजह इबादत करने की, समझ के अपनी नेमतों की बरकतों को लीजिए। और आज आपने वाकई ढूंढ ढूंढ के नेमतों की लिस्ट बनाई। 30 दिन में 5 को ज़रब दे लीजिए, 150 नमाजें हैं ना, 150 नेमतें एक महीने की लिस्ट बना लें। इस महीने की मेरी ये नेमतें, मैंने इस पे गौर करना है। और ये तो कुछ दिन आप करेंगे ना, फिर तो देखिएगा वो डिस्कवरी चैनल होगा कि आपको लगेगा कि अल्लाह नमाजें ज़्यादा कर लूँ, क्योंकि ये 150 से ज़्यादा बन रही है नेमतें। फिर उसी से फिर आपकी तहज्जुद शुरू हो जाएगी, उसी से फिर आप कुछ और बढ़ाएंगी तो आपकी चाश्त होगी, आपकी शराक होगी, अवाबीन होगी। ये जो नमाजें बढ़ती रहती हैं ना वक्त के साथ साथ, पहले फ़राइज़, फिर सुन्नतें, फिर नवाफिल, फिर 6 नमाजें होती हैं, फिर 7 होती हैं, ये अबूदियत के जज्बे सिमटते ही नहीं है। और कितनी लंबी लिस्ट है अल्लाह मेरे पास। अच्छा, फिर अगली नमाज में बात करूँगी। अगर आपने, मैंने इस रुख को पा लिया, यकीन करें नमाज और ज़िंदगी दो अलग धारियाँ नहीं होंगी। हाँ, जल्दी से नमाज पढ़ के आती हूँ। और सबसे बड़ी चौथी वजह दे के आगे ले चलती हूँ आपको, और वो क्या है कि आप और मैं इबादत क्यों करें, क्योंकि ये हमारी फितरत है, इंसानी फितरत की पुकार है। और वो क्या है कि वो किसी के आगे झुके। इबादत एक ऐसी तलब है, आप देखिए ना कि 6-7 घंटे के बाद भूख लगती है कि नहीं, 3-4 घंटे कुछ ना पिए तो पानी पीने को दिल करता है, 7-8 घंटे बिस्तर पे ना लेटे तो सोने को दिल करता है। बस जैसे भूख, प्यास, नींद और इसी तरह से बाकी बेसिक नीड्स है ना, इसी तरह से इबादत करना ये इंसान की नीड है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसान की प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ डाल दी, जिसको कुल्लू मौलूदिन यूलदु अलल फितरा भी कहा जाता है। हर बच्चा फितरत पे पैदा किया जाता है, और फितरत क्या है, इंसान अल्लाह के आगे झुके। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो लिहाजा ये आपकी मेरी अर्ज है, तलब है। हर ज़रूरत को अल्लाह ने किसी को कुछ दिनों तक लगाया होगा, किसी को घंटों पे लगाया है, किसी चीज़ की महीने में एक आध बार भी ज़रूरत पड़ती है। ये अल्लाह सुबहाना ताला की, कह लीजिए, डाली हुई एक ऐसी DNA के अंदर एक ऐसी खूबसूरत चीज़ डाल दी है कि फिर बंदा इसको करेगा। और याद रखिए, अगर सही जगह से ये ज़रूरत पूरी ना हो तो मिसप्लेस हो जाती है। कैसे? पहले मिसाल लीजिए, खाने के वक्त पे खाना खा लिया आप, जो घरों में आमतौर पे पकता है, एक रोटी और थोड़ा सा सालन और चाय का एक कप ले लेंगे तो आप सैचुरेटेड फील करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बिलफर्ज खाना पका हुआ नहीं है, या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और खाना नहीं खाते, तो क्या खाएंगे भला? नीमको ले लेंगे, थोड़ी सी नीमको खाया, खूब मज़ा आया, मिर्चे, नमक, हाय प्यास प्यास प्यास, फ्रिज में जाएं कोक, थोड़ी सी कोक पी लेते हैं, कोक खोल लीजिए, पी लीजिए। यानी जब हम रेगुलर और हेल्दी मील छोड़ते हैं तो हम फिर इधर उधर की चीज़ों में पड़ते हैं। इसकी भी सी मिसालें, ये तो खाने की मिसाल है ना। हलाल ताल्लुकात को छोड़ने वाले हराम जगहों से ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। याद रखिए, एक बीवी काफ़ी है आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अगर आप हलाल पे मुतमईन हैं और आप एक हलाल का दरवाज़ा बंद करिए, 10 हराम ताल्लुकात भी आपको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। बस अबूदियत के जज्बों को हलाल जगह से हासिल करते हैं। अदरवाइज पता क्या होता है, जो अल्लाह के आगे नहीं झुकेगा ना, किसी पत्थर के आगे झुकेगा, लकड़ी के किसी दरख्त के तने के आगे झुकेगा, किसी गाय के आगे झुकेगा, पैसे को खुदा बनाएगा, कोई शौहर को, बीवी को पूजेगा, और सबसे बड़ी बात तागूत को पूजेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फबा सल्लल्लाहु मुहम्मद बिल हक, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा। क्यों? लियुखरिज इबादहु मिन इबादतिल अवसानी इला इबादती, ताकि वो बंदों को बुतों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले आए। اور 1/3 سے زائد قرآن جو ہے نا اسی موضوع کو ڈیل کرتا ہے. اجتنب الطاغوت, لا الہ الا اللہ, پہلا کلمہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو مکہ والوں نے کوہ صفا پہ سنا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اللہ کو ایک مان جاؤ فلاح پا جاؤ گے. تو کیا پتہ چلا کہ عبادت آپ کو مجھے اپنے فطرت کی پکار کے جواب میں بھی کرنی ہے, ادروائز پھر ادھر سے ادھر چلیں گے. تو یہ 4 پوائنٹ کافی ہیں, تھوڑے تھوڑے لیتے رہیے, فائدہ ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں, عبادت کا کردار کیا ہے ہماری زندگی میں. بس سمجھ گئے نا, دیکھیں نا رولز اینڈ ریگولیشنز تو ہوتے ہی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ پانی کا کیا رول ہے باڈی میں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جسم کی گندگیوں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے. کیلشیم کا رول کیا ہے, فوڈ کا کیا ہے, کاربونیٹس کا کیا ہے. جیسے جیسے ہم زندگی میں مختلف چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اثر تو پڑتا ہے. تو رول آف ورشپ کیا ہے, عبادت کیا کردار ادا کرتی ہے ہماری زندگی میں, تو اس کے بھی آپ کو چند پوائنٹس لکھاؤں گی. نمبر ایک, ہمیشہ کا سرمایہ ہے. دنیا میں ہم بہت ساری دولت جمع کرتے ہیں لیکن پھر وہ چلی جاتی ہے. کبھی تو زندگی میں وہ چیزیں ہی چلی جاتی ہیں اور ہم خالی ہاتھ جیتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ چیزیں تو ہوتی ہیں تو ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عبادت کیا ہے آپ کی میری زندگی کا, اگر اینڈ وقت آ جائے جو ہمارا اینڈ پروڈکٹ ہوگا نا وہ عبادت ہوگی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیریشیبل تھنگس کو امپیریشیبل کر دیا. کیسے؟ قرآن کی آیت لے لیجئے, آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی سورۃ نحل 96, مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن کرے چومنے کی اجازت ہوتی نا قرآن کو تو میں ان آیتوں کو چوم لیتی, اتنا پیارا فلو ہے ان آیتوں میں. مَا عِندَكُمْ, جو کچھ تمہارے پاس ہے. پھر اس میں اپنے یہ چھوٹے موٹے بچے بچونگڑے اور پوتے نواسوں کو بھی سوچ لیں, جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ انفدو, یہ سیڈ بات ہے, یہ ختم ہو جاتا ہے. تمہارے ہاتھوں میں بے برکتی ہی بڑی ہے جو اس چیز کو تمہارے ہاتھ لگ جائیں, جس چیز کو اس دنیا میں تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے, بس وہ ختم ہوگی. جو برتن بنے گا وہ ٹوٹے گا. جو کچھ بھی تم کرو گے, کھانا بھی بناؤ گے, آج گروسریاں خرید کے لا رہے ہو, کل تک یہ ختم ہو جائیں گی. کچھ دن کے بعد یہ بالکل سڑاند دینے لگ جائیں گی. جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہوگا, لیکن وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. باق, باقی رہنے والا. اللہ کا نام بھی سنیے جا کے کبھی تفسیر میں, الباقی, باق, باقی رہیں گی. ہاں لیکن والا نجزین الذین صبروا, اور جن لوگوں نے صبر کیا, اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کرے. اور یہاں صبر اسے مراد پتہ کون ہے؟ عبادت کرنے والے. الذین صبروا, جنہوں نے صبر کیا, اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون, تو ہم ان کو بدلہ اس سے زیادہ اچھا دیں گے جو وہ کرتے تھے. کیسے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ ہر نماز ایک جیسی نہیں ہوتی. مثلاً کبھی جلدی میں پڑھتے ہیں, کبھی نیند میں پڑھتے ہیں, کبھی تھکن میں پڑھتے ہیں, اور کبھی بہت فریش مائنڈ پڑھتے ہیں. بہت بڑی کوئی نعمت ملے اس کے بعد والی نماز, اور بہت بڑا غم ملے اس کے بعد والی نماز. دو نمازیں یاد کر لیجئے, انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا نمازیں ہیں. اب ہوتا کیا ہے, سوچیے اپنے آپ کو ساتھ چلائیے میرے, کہ جب ہم کوئی بہت خوشی کی کیفیت میں نماز پڑھتے ہیں یا ہم بہت غم کی کسی گھڑی میں کوئی نماز پڑھتے ہیں, وہ نماز ان نمازوں سے بہت مختلف ہوتی ہے جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اتنی بات سمجھ گئے؟ آیت کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی, ورنہ نہیں. اب ہوا کیا, مثلا آپ ڈیلی نماز پڑھتے ہیں, اس کو گریڈنگ کریں نا, تو آؤٹ آف 10 کبھی 7, 6, 8, اور اللہ معاف کرے کبھی کبھی تو 4-5 ہی نمبر ملتے ہوں گے. حدیث ہے پوری کہ نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جس میں تمہارا دل حاضر ہے, اور کچھ کو تو نماز کا چوتھا حصہ, اور کسی کو آٹھواں ملتا ہے, اور کسی کی نماز اس کے منہ پہ بھی ماری جاتی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ایسا تو نہ کرے. اچھا اب کیا ہوا, वो शुक्र वाली नमाज याद कर ले। अनएक्सपेक्टेड काम हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया था ये हो नहीं सकता, ऑपरेशन होगा या माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, कोई भी इमेजिनेशन में ले आई ये बात। इतने में अंदर से नर्स भागी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह शी डिलीवर्ड बेबी। अब वो जो खबर आपके कानों पे पड़ी ना कि अल्लाह ने बगैर ऑपरेशन के बगैर मुश्किल के माँ बच्चे को सही हालत में रख दिया, आप अपनी जगह से उठे और पास ही जाए नमाज था या नहीं भी था, आप जाकर रो रो के दो नफिल पढ़ते हैं। कोई उस नमाज की कैफियत को जान सका है? वो जो दो नफिल पढ़ेंगे ना, ये हैं बिया सनी माँ का नया मना। ये 10 out of 10 नहीं बल्कि ये 12 out of 10 बनती है। लगता है ज़िंदगी में आज पढ़ी पहली नमाज है। अच्छा अब क्या होगा क़यामत के दिन? अल्लाह ताला पता है क्या करेंगे, आयत भी नज़र रखें फिर मज़ा आएगा। وَلَنَجْزِيَنَّ الصَّبَرُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ अल्लाह ताला आपके साथ क्या करेगा, पिछली ज़िंदगी की सारी नमाजें 5 out of 10, 6 out of 10, 7 out of 10, 4 out of 10, अल्लाह उन सब को जाकर अपग्रेड करेगा। और بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ये जो आपने दो नफिल पढ़े हैं ना, 12 out of 10, इसके ऊपर जाके सबको अपग्रेड कर देगा। ये है इबादत का रोल। कितनों को समझ आया है? अल्लाह से कहा करें कि मालिक कोई ऐसी नेकी करा ले मुझसे जो किसी मुश्किल घड़ी में तेरे आगे पेश कर दूंगी और बस रो ही पड़ूंगी। ये है भी अफसनी माँ कानू या मालूम। कुछ कैश इखलास का, सुन्नत की तबाह का, सिंसेरिटी का, लॉयलिटी का, सच्चाइयों का रखा करें अपने बटवे में। जहाँ फंसे बटवा खोला, अल्लाह याद है उस दिन। अल्लाह जी आपको याद है वो क्या हुआ था उस दिन? हाँ बंदे मुझे सारा याद है। अच्छा अल्लाह जी मेरी उस वक्त की उस काम को आज कबूल करके मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। यकीन करिए क़यामत के दिन कितनी गुमशुदा निकियाँ हमें मिलने वाली हैं, क्या क्या हमें मिलना है। अगर कुछ रख के भूले हुए हैं ना तो भूले रहिए, देखिएगा अल्लाह आपकी निकालेगा, क्योंकि अल्लाह एक ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता। फ़मन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा और फिर शर्रन यरा भी है। या तो हम सिर्फ ज़र्रतिन खैरन यरा कोई देख के इंजॉय करें तो अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। मिन मिसकाला ज़र्रतिन कभी का मिन खर्दल, अल्लाह के अकाउंट्स बहुत अप टू डेटेड है। हदीस में आता है कि एक शख्स रात को सो रहा था और सोता हुआ अल्लाह के खौफ से उठ गया, खशियत थी, और उठा वजू किया, जाए नमाज पर खड़ा हो गया और फिर अल्लाह से बातचीत, अल्लाह से गुफ्तगुएं, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक, रेनोवेशन ऑफ द टर्म्स, आंख से आंसू निकल गया। बस मुंह से बात कहाँ निकलती है, मुझे तो समझ नहीं आती लोग लंबी चौड़ी दुआएं कैसे मांगते हैं। दुआ तो मुँह पर आती कोई नहीं, या तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और या फिर या अल्लाह तेरे मस्कीना जिस बंदे बताएं तो उसको जिसको पता नहीं है। खैर क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स का मामला कैसे पेश करेगा? दो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो यह है कि ऐसा बंदा बाज़ दफ़ा सिर्फ एक नेकी की कमी की वजह से परेशान होगा, यानी अगर वो एक नेकी कोई मिल गई तो दर्जे बुलंद हो जाएंगे, या जन्नतियों में चला जाएगा, या कह लीजिए असहाबुल जमीन से उठकर साबिकून अव्वलून में जाएगा, यानी कुछ ना कुछ अपग्रेडिंग हो जाएगी। और अगर नेकी नहीं है तो फिर लेवल डाउन है। वो कहेगा अल्लाह ताला अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक नेकी ले आऊँ, काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे अपनी फैमिली के, ख़ानदान के, दोस्तें, सहेलियाँ, ससुराली, तो मैं ज़रा अगर एक नेकी ले आऊँ तो क्या फिर आप मुझे अपग्रेड कर देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ लेके आओ। और वो खुशी खुशी पहुँचेगा कि मुझे तो बस एक क्या अभी 100 लेके आता हूँ। माँ भी है उधर जो हर बात पे कहती थी मेरी बेटा मेरी जान, तो एक नहीं तो मेरी सारी ले ले। लेकिन उस दिन न माँ काम आएगी न बाप न भाई। यौम यफिर्रुल मरु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व अखी, सारी परेशान है लेकिन लिमरे मिनहुम यौम इज़िन शानुन युग्नी। उस दिन हर एक की हालत ही कुछ ऐसी हो चुकी होगी जो उसको दूसरों से बेनियाज कर देगी। तो यही होगा, शर्मिंदगी के साथ वापस, ना शौहर ने कुछ दिया, ना बच्चों ने, ना माँ बाप ने। इतने में फिर अल्लाह सुभान तआला फरिश्तों से कह गए कि जाओ मैंने इस बंदे के लिए जो छुपा के रखा था ना वो लेके आओ, और वो लेने जाएगा, और लेके आएंगे तो उसकी नेकियों के पलड़े में डाल देंगे, तो वहां एकदम झुकाव आ जाएगा, गुनाहों का पलड़ा ऊंचा और नेकियों का भारी। जा भाई, यू आर अपग्रेडेड, अजरहुम बियाख्सानी माँ कानू या मनु, इतना प्यारा ये लफ्ज़ लगता है। और ये कुरान में कम से कम 3 जगह ये मुकाम आता है कि जिसमें अल्लाह ताला ये खुशखबरियाँ देते हैं कि मैं तुम्हारी चीज़ों को अपग्रेड कर दूंगा, इतना फिक्र ना किया करो। हमारी एक मामी जी हैं, मेरी अम्मी की मामी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, 100 से तो ऊपर की अभी भी हैं, और माशाल्लाह बुढ़ापे के अलावा कोई बीमारी भी नहीं है। तो जो बंदा उनके पास जाता है ना, हाथ पकड़ लेंगे, मेरे लिए दुआ करो, मुझसे अल्लाह राजी हो जाए, ऐसे। तो उनके बच्चे, अम्मी जी अल्लाह राजी हो गया हुआ है, अम्मी जी फिक्र ना करया करो, अम्मी जी आप हमारी फिक्र करें। तो मुझे वो याद आ गई है कि इंसान की तड़प ही ये है कि बियाख्सानी माँ कानू या मालूम मिले। हम ये कहाँ चाहते हैं कि जैसा पेपर हुआ उतने ही नंबर आए। मैं तो ये नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ भाई पेपर मेरा कम अच्छा हो लेकिन नंबर मेरे ज्यादा अच्छे आए। तो वहां भी यही है, यही है असल में रोल ऑफ वर्शिप। खैर, वो शख्स जब उसको नेकी मिल जाएगी और वो जन्नत में जाने लगेगा, दर्जा बुलंद होगा, तो कहेगा अल्लाह ताला मुझे आपका शुक्रिया बोलना, आपने बड़े एहसान किए मेरे ऊपर ज़िंदगी में, लेकिन आज तो बहुत ही बड़े एहसान किए आपने कि एक नेकी कहाँ से ला कर मुझे दे दी और मैं जन्नत में पहुँच गया और ऊपर चला गया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये मैंने नहीं दिया, ये भी तेरी ही थी, हाँ छुपा के रखी हुई थी। कभी पर्स में आप कुछ 100-200 डाल के छुपा देते हैं ना कि शायद कहीं जरूरत पड़ गई तो निकाल लेंगे, ऊपर होंगे तो खर्च हो जाएंगे या गुम जाएंगे। अल्लाह ताला कहेंगे कि बंदे ये तेरा अमल था, हाँ मैंने इसकी कीमत आज निकलवाई है। वैसे करेंसी रेट भी चेंज होता है ना, तो आप कहते अच्छा ये बच गया था नोट, अच्छा तब तो ये 100 पे 20 मिल रहे थे, आज 50 मिल रहे हैं, खुशी होगी। तो फिर वो पूछेगा अल्लाह कि ये कौन सा मेरा अमल है, तो याद कराया जाएगा कि वो रात थी, ठंडी थी, सब सो रहे थे, तू भी सो रहा था, एकदम तेरी आंख खुली, मेरी खशियत ने, मेरे खौफ ने तुझे बेदार किया और तू बिस्तर से उठा, फिर तूने वुजू भी किया, याद। अच्छा सारी मेमोरी वापस आ जाएगी, रील चल रही होगी दिमागों में, बंदा के कहा अल्लाह ताला मुझे याद आ गया, अच्छा जी याद आ गया तो बहुत ही अच्छा हो गया। उसके बाद क्या होगा, तुझे याद है तू वो जायनमाज पे खड़ा था और तू रो रहा था, तू रो रहा था, या कनाबुदु या कनस्तीन, और उस वक्त तेरी आंख से एक आंसू निकला था। जी अल्लाह मुझे याद है, कहा जाएगा ये उस आंसू को हमने मोती बना के छुपा दिया था, चाहता तो अगर तेरे उस एक आंसू की कीमत पे दुनिया में तुझे बादशाह बना देता। ये सिर्फ मैं आपको आपकी फीलिंग्स के लिए बता रही हूँ, इसीलिए तो हदीस कोट नहीं की, खुलासा बताती हूँ कि कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कितना कदरदान है कि अजर हम भी अफसनी माँ कानू या मलू, कि बंदे तेरा वो आंख का आंसू मैंने मोती बना के इसलिए छुपा दिया था कि मुझे पता था मेरे बंदे पे ये मुश्किल वक्त आना है मुस्तकबिल में, तो दुनिया में इसकी कीमत लगाता, पता नहीं बादशाह ही तू बन जाता, पता नहीं तुझे माल औलाद और खाने घर कोठियां मिलती, बट मा इंदकुम, वो तो तूफना करके आ चुका होता अभी तक। वमा इंदल्लाही बाक, अल्लाह के पास रखा करें अपनी चीजें, लिखिए एक जुमला, बाकी रहने वाले के पास अपनी चीजें छुपा दे, अल्लाह जी ये मेरा आप रख ले, अल्लाह जी मेरा बच्चा ना आप ले ले, अल्लाह जी आप मेरा ये बेबी, मेरा बच्चा, मेरा आंखों का तारा, अल्लाह जी आप इससे देखियो के काम कराएं, अल्लाह मेरे से एक को 100 में बदल दे, अल्लाह जी मेरे पास थोड़े से जमा हो गए हैं कुछ पैसे, आप रख लीजिए इसको प्लीज़, कहीं भी जहाँ भी लगते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी ना मैं भी ले लूँगी, तो मुझे ना पड़ी ना ज़रूरत तो ये आपका ही है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के साथ भाई वाली डाल ले, अल्लाह के साथ सौदेबाजियाँ शराकत बाजियाँ कर लें, आपका वो 1-2% का जो कहना चाहिए ना कि शेयर है, 90%, 98% के अंदर मिल के ना वो भी जाके बाक हो जाएगा। हजरत उस्मान ऐसे व्यापारी थे, अब्दुलरहमान भी फनौफ ऐसे थे, हम वो 2 जमा कर करके रखते रहते, नहीं है ही 2 तो ये भी दे दिए, अल्लाह के बंदो माइंदकुम यनफदु, जो तुम्हारे पास है ना वो थोड़ा दिल ही नहीं खुलते। आज तक अल्लाह ने पता नहीं क्या क्या देने के इरादे किए थे, हमने लिए ही नहीं, हाथ ही नहीं खोले। थोड़ा सा तो खोलो, उंगलियां तो खोलो, चीची उंगली खोलो, अपनी शहादत की उंगली खोलो, अपना अंगूठा तो खोलो। तुम बंद मुट्ठियों के साथ जन्नत लेना चाहते हो, नहीं मिलेगी। तो क्या पता चला, खुलासा कर देती हूँ। इबादत का रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में, कि हमारी फना होने वाली ज़िंदगी गैर फानी ज़िंदगी में बदल जाती है। और फिर वाकई ये सच है कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चेहरा हलाक होने वाला सिवाय उसके चेहरे के, अल्लाह के अलावा कोई चीज़ दुनिया में बाकी नहीं रहेंगी।